सेलिब्रेशन। नानी माँ ने अपने हाथों से अंश के लिए एक छोटा सा मुकुट बनाया था जो उन्होंने अंश को पहना दिया। अब छोटा सा अंश कान्हा जी बनकर बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अब आगे अंश को देखते ही ना जाने अरमान को क्या हुआ कि उसका मन हुआ कि वो आगे बढ़कर अंश को अपनी गोद में ले ले और उसके गोल मटोल गाल पर एक प्यारा सा किस कर दे। लेकिन उसने जैसे तैसे अपने इमोशंस कंट्रोल किया और अंश को एकटक देखता रहा। बाकी सभी कपल्स, खासकर लड़कियां, तो अंश को देखते ही उस पर फिदा हो गई थीं। हर कोई उसके छोटे छोटे हाथ चूम रहा था तो कोई उसके गालों पर प्यार कर रहा था। सभी उसे कान्हा जी के रूप में देख देख कर प्यार दुलार कर रहे थे। ये देखकर नानी माँ और दादाजी भी मुस्कुरा रहे थे। वहीं सबकी नज़रें घूम फिर कर अरमान पर ही टिक रही थीं, क्योंकि अंश को देखकर अरमान ने अभी तक कोई खास रिएक्ट नहीं किया था। सभी लोगों ने धार्मिक कपड़े पहने थे और श्रद्धा में डूबे हुए लग रहे थे। उन सब लड़कों का ये रूप देखकर अरमान पूरी तरह से दंग था। उसने अगले ही पल सोचा, आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? इतने साल मेरे साथ रहते हुए इन्होंने कभी कोई त्यौहार नहीं मनाया, ना ही कभी कोई त्यौहार में इंटरेस्ट जताया। लेकिन आज इन्हें हो क्या गया है? ये सब इतनी हंसी खुशी त्यौहार क्यों मना रहे हैं? अरमान के मन में यही सब सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उन लोगों से कोई सवाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अरमान ने खुद उन्हें अपने मेंशन में त्यौहार मनाने से साफ मना कर दिया था और वो खुद भी वहां त्यौहार मनाने नहीं जा रहा था। लेकिन ये लोग कहाँ त्यौहार मना रहे थे, इसके बारे में अरमान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसी सोच में अरमान का दिमाग पूरी तरह से चल रहा था, लेकिन चाहकर भी वो कुछ पता नहीं कर पा रहा था। फिलहाल तभी अचानक अरमान के कानों में चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी उसने देखा कि आस्था सीढ़ियों से चलकर एक बार फिर से उसके सामने आ रही हैं। आस्था को देखकर अरमान के दिल की धड़कन मानो जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी नज़रें सीधे जाकर एक पल के लिए आस्था की खूबसूरत पतली कमर पर ठहर गईं, लेकिन उसने खुद की नज़रों पर कंट्रोल किया। उसने आस्था को घूरते हुए सोचा, आखिरकार ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? जबकि इसका पति यहाँ मौजूद नहीं है तो ये ऐसे सच थच क्यों तैयार हुई है? कहीं ये मुझे ही अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम अरमान सिंघानिया है और अरमान सिंघानिया इस तरह किसी ऐरी गैरी लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ सकता। वहीं आस्था ने अरमान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो जानती थी कि अरमान की गहरी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। उसने सीधे अपने बेटे के पास जाकर उसे गोद में उठा लिया और उसके माथे पर चूमते हुए बोली, हमारा बच्चा आज कितना प्यारा लग रहा है। काश उसके पिता भी यहाँ होते और उसे कान्हा जी के रूप में देखते तो कितने खुश होते। आस्था ने जैसे ही बातों में जानबूझकर अपने पति को याद किया तो आस्था के मुंह से उसके पति का जिक्र सुनकर अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। आस्था की इस बात पर सभी लोग ने मौके का फायदा उठाया। उनमें से आहान की आवाज़ सबसे ऊंची थी। आहान एकदम बोला, भाभी, मुझे तो लगता है कि इसका पति पूरी तरह से यूजलेस है, जो इतने प्यारा बच्चा और खूबसूरत सी बीवी को छोड़कर चला गया। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे काफ़ी अजीब सा गुस्सा महसूस होने लगता है। वहीं अब ध्रुव थोड़ा शरारती अंदाज में बोलता है, अब चाहे कुछ भी हो, अब उनका पति आए या भाग जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे पास आस्था भाभी है और साथ ही साथ इतना खूबसूरत बच्चा भी है। अगर इसके बाप को अकल नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे सब शरारत करते हुए अरमान पर तंज कसने लगे तो नानी माँ उन सबको शांत कराने लगी और उन्हें टोकते हुए बोली, अच्छा अच्छा, बस बस, अब टाइम बिल्कुल ख़राब मत करो। ऑलरेडी शाम हो चुकी है, हमें फटाफट से शाम की पूजा की तैयारी करनी चाहिए और साथ ही साथ अपना जागरण का कार्यक्रम भी शुरू करना है। इसलिए मैंने कुछ लोगों को भी बुलाया है जो भजन कीर्तन करेंगे। नानी माँ की बात सुनकर सभी लोग ने अगले ही पल सहमति जताई। वहीं रौनक और रश्मि ने प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरा। ये धार्मिक माहौल उनके बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी था और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे सब लोग एक एक करके वहां से बाहर जाने लगे। अरमान अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीते हुए यही सोच रहा था, आखिर ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं और किसी ने एक बार भी मुझे ना तो बुलाया और ना किसी ने मुझे फंक्शन में शामिल होने के लिए कहा है। असल में अरमान के मन में यही चाहत थी कि कोई उससे कहे कि वो भी इस त्यौहार में शामिल हो, लेकिन सब लोग उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे। यही बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अब सबके जाने के बाद केवल दादाजी, अरमान और आस्था ही वहां रह गए थे। अंश तो पहले ही आहान की गोद में सवार होकर मेंशन पहुंच चुका था और वो महफिल की शान बन चुका था। दादाजी जानते थे कि अरमान को फंक्शन में बुलाने के लिए उन्हें क्या करना है। वे अरमान के टेबल के पास खड़े होकर थोड़ा तेज आवाज में आस्था को देख के पूछते हैं, अरे आस्था बेटी, तुम अपने पति के लिए भी कपड़े वगैरह लेकर आई हो ना आज रात त्योहार में पहनने के लिए? आस्था ने एक नजर अरमान को देखा और फिर मायूस सा चेहरा बनाकर बोली, जी दादाजी, मैं अपने पति के लिए भी कपड़े लाई थी, लेकिन देखिए ना, मेरी बदनसीबी है कि आज हमारे बेटे की पहली जन्माष्टमी है और मेरा पति ही मेरे बेटे के साथ नहीं है। सच बताऊं तो दादाजी, मुझे आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। काश मेरे पति भी मेरे साथ होते तो हम सब मिलकर फंक्शन मनाते, कितना अच्छा लगता। हम सब साथ मिलकर कान्हा जी की पूजा करते। आस्था का जवाब सुनके दादाजी ने तिरछी नजरों से अरमान की ओर चालाकी से देखा और उसे घूरते हुए एकदम से भड़क उठे। बदमाश, ये सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तेरी वजह से इसका पति इससे दूर हुआ है और अभी तक तू इस बच्ची का पति ढूंढ भी नहीं पाया है। तो इसलिए अब तू एक काम कर, जब तक इसका पति मिल नहीं जाता तब तक उसकी सारी जिम्मेदारियां तुझे ही निभानी होगी। इसलिए अब फटाफट से आस्था बेटी, जो कपड़े लेकर आई है वो कपड़े पहनकर हमारे साथ सामने वाले मेंशन चल, क्योंकि पूरा परिवार वहीं जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहा है। यहाँ तो तूने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने से साफ मना कर दिया था, तो हम क्या करते, हमें तो त्यौहार मनाना ही है। इतने दिनों बाद घर में थोड़ी बहुत खुशी आई है, क्या तू उसमें शामिल नहीं हो सकता? कम से कम उस छोटे बच्चे के साथ तो पूजा कर सकता है ना, चाहे मन से मत करना। अब जैसे ही दादाजी ने सीधे सीधे अरमान को ये ऑर्डर दिया तो ये सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भेजी, फिर वो झुंझलाकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी, मैं इस लड़की के पति की जगह ऐसे कैसे ले सकता हूँ और मैं क्यों उस बच्चे के साथ पूजा करने जाऊँ? दादाजी आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे, क्यों आप मुझे इस लड़की के चक्कर में फंसा रहे हैं? आप जानते हैं ना, अरमान सिंघानिया का हर मिनट कितना कीमती है। आज रात मेरी इंटरनेशनल मीटिंग है जिसे मैं किसी भी कीमत पर पोस्टपोन नहीं कर सकता, समझे आप? अरमान की इस बात को सुनने के बाद दादाजी ने सीधे आस्था के सामने हाथ जोड़ लिए और तभी हुई आवाज में बोले, हमें माफ कर देना बेटी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे। हमारे पोते की वजह से तुम्हारा पति आज तुम्हारे साथ नहीं है। हम तुम्हारे इस दुख को समझ सकते हैं बेटी। ये सब कहते हुए दादाजी की आंखों में नकली आंसू भी आ गए थे। वहीं आहान और ध्रुव, जिन्हें नानी माँ ने मिठाइयां लाने के लिए वापस सिंघानिया मेंशन भेजा था, वो ये सारा ड्रामा दरवाजे पर खड़े होकर आश्चर्य से देख रहे थे। जैसे जैसे वो सारा ड्रामा देखने लगे, वैसे वैसे उन्हें दादाजी की एक्टिंग स्किल्स देखकर सारा मामला समझ आने लगा।
आहान ने खुश होकर हमेशा की तरह ध्रुव के कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखा तूने, हमारे दादाजी कितने कमाल के एक्टर हैं। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर दादाजी इस वक्त बॉलीवुड या हॉलीवुड में ट्राई करें तो पक्का ऑस्कर जीत जाएंगे। अरे एक्टिंग के मामले में तो दादाजी हमारे बच्चन साहब को भी पीछे छोड़ देंगे, देखा तुमने ध्रुव? ये बोलने के बाद आहान दादाजी को देखकर हंसने लगा। आहान की बात सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए चिढ़ गया। वो मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, तू बार बार मुझे क्यों तंग करता रहता है? अरे इरिटेट करने की भी एक हद होती है यार, मैं भी तेरे साथ साफ साफ देख रहा हूँ कि दादाजी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा सुन, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर उनकी एक्टिंग में चार चांद लगा दें। इतना कहने के बाद ध्रुव आहान के कानों में कुछ हुसुर फुसुर करने लगा, जिसे सुनकर आहान ने हामी भरी। फिर दोनों एक दूसरे को हाईफाइव देते हुए आगे बढ़े। अपने दादाजी को इस तरह एक मामूली सी केयरटेकर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हुए देखकर अरमान के सीने में गुस्सा भड़क उठा। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? एक पल में उसकी आंखें कठोर हो गई और वो दादाजी पर बरस पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपना सर किसी के सामने झुकाएं। फिर आप कैसे एक मामूली सी केयरटेकर के सामने अपना सर झुका सकते हैं? मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादाजी अगर आपने ये फिर दोहराया तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। अरमान की धमकी सुनकर दादाजी तुरंत उसे घूरते हुए कहने लगे, तुझे गोली मारने के अलावा आता ही क्या है नालायक? क्या तूने कभी इस बच्ची की फीलिंग और उसके इमोशन समझने की कोई कोशिश की है? ये उसका पहला बच्चा है और उसका पति भी उसके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। क्या तूने कभी ये समझने की कोशिश की है? नहीं ना, उल्टा तू हमें ही घमंड दिखा रहा है कि हम इससे माफी ना मांगे। खबरदार, अगर आज के बाद तूने आस्था बेटी को ऐसी धमकियां देने की कोशिश की तो हम तेरी टांगे तोड़ देंगे। भले ही तू दुनिया के सामने अरमान सिंघानिया हो, डेविल किंग हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, पर हमारे सामने तो तू हमारा पोता ही रहेगा, समझा तू? दादाजी ने कठोर अंदाज में अरमान को डांटते हुए ये कहा और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। इससे पहले वो उसे और फटकारते तभी ध्रुव और आहान उनकी बातों के बीच में कूद पड़े। अरे दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि अरमान भाई एक मामूली सी केयरटेकर के लिए ऐसा कुछ करेंगे? और वैसे भी अरमान भाई पूरी रात जाग नहीं सकते, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो पूरी रात जाग सके, समझे आप? उनकी इस बात पर दादाजी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों बेवकूफ किसकी साइड ले रहे हैं, अरमान की या केयरटेकर की, मतलब आस्था की। इस बीच आस्था अपनी आंसू भरी आंखों से कभी अरमान को देखती तो कभी दादाजी को, तो कभी हैरान होकर ध्रुव और आहान को बड़ी बड़ी आंखों से देखती। उसे अब सारी सिचुएशन समझ आ रही थी कि ये सभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और आस्था जानती थी कि अरमान को आगे किस तरह संभालना है। अचानक आस्था उदास स्वर में दादाजी की तरफ देखकर बोली, देखिए प्लीज आप लोग हमारी वजह से झगड़ा मत कीजिए, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपके घर में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। रही बात त्योहार मनाने की, तो आज रात की ही बात है, आधी रात के बाद तो हम अपना उपवास भी तोड़ देंगे। हमें लगता है कि हमें जाकर अपना काम संभालना चाहिए। वैसे भी हमने मिस्टर सिंघानिया को कभी त्योहार मनाते हुए नहीं देखा, उन्हें ये भी पता नहीं कि पूजा कैसे होती है। जो काम मिस्टर सिंघानिया कर ही नहीं सकते, हमें उनसे वो काम जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। इसलिए आप लोग सामने वाले मेंशन में चलिए, हम जागरण में अभी आ रहे हैं। आस्था के इस बात पर अरमान का घमंड आसमान छूने लगा। वो तुरंत दादाजी के हाथों से आस्था के लाए हुए कपड़े लेकर बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है कि अरमान सिंघानिया पूजा वगैरह नहीं कर सकता? अरमान सिंघानिया रात भर नहीं जाग सकता? अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो अरमान सिंघानिया ना कर सके, समझे तुम सब? ये कहने के बाद अरमान वो कपड़े लेकर अपने कमरे में गुस्से से दंदनाते हुए चेंज करने के लिए चला गया। अरमान के जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे अरमान का घमंड, उसका एटीट्यूड ही उससे वो सारे काम करवा लेता है जो वो कभी नहीं करना चाहता है। दादाजी ने भी आस्था को गले से लगाकर शाबाशी दी, बेटा आज तो मजा आ गया, तूने नहले पर तहला दे दिया। तभी आहा ने एकदम से एक्साइटेड होकर दादाजी की तरफ देखकर बोला, अरे दादाजी आपने तो आज एक्टिंग करने के मामले में बच्चन साहब को भी पीछे छोड़ दिया। आहान की बात सुनते ही दादाजी एक पल के लिए ठिटक गए और वो आहान को घूरकर उसका कान खींचते हुए डांटने लगे, तू बड़ा शैतान हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता तेरे अंदर का बचपना कब जाएगा, तू खुद अब बाप बनने वाला है, सुधर जा वरना मैं तेरे आने वाले बच्चों के सामने ऐसे ही तेरे कान खींचता रहूंगा।